आपको अच्छा नहीं लगेगा कि उसने मेरी बात के अंदर एडिशनल अल्फाज क्यों कह दे, मैंने तो ये कही नहीं थी, क्यों एम्ब्रॉयडरी की मेरी बात के ऊपर। जब मुझे अच्छा नहीं लगता तो अल्लाह रब्बुल इज्जत वल जलाल कैसे ये पसंद कर सकता है और कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि उसके बताए हुए दीन के अंदर एडिशन सब्ट्रैक्शन किया जाए। ये मुमकिन नहीं है कि ये चीज़ अल्लाह जो है वो बर्दाश्त कर जाए। बास स्कॉलर्स कहते हैं कि अल्लाह पर इस तरह से झूठ बांधना अल्लाह के गज़ब को भड़काने वाला मामला है, अल्लाह को गुस्सा दिलाने वाला मामला है। तो बहुत केयरफुल होने की बात है कि आप और मैं कोई भी चीज़ दीन के बारे में ऐसी अपनी ज़ुबान से ना निकालें जिसका हमें इल्म ना हो, और अपना एक ज़िंदगी का उसूल बना लें। आपके कन्फ्यूजन खुद ही दूर हो जाएंगे। ये सोशल मीडिया पर पहले भी मैंने बात की थी कि बहुत कन्फ्यूजन फैलता है, और आजकल क्योंकि गर्मी हो रही है तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो गर्मी को दूर करने के लिए जो है वो बताई जाती हैं। देखिए, मुसलमान जिस दौर में कुरान नाजिल हुआ है क्या टेम्परेचर होता था सहरा का? तो अल्लाह के रसूल की जितनी मसनून दुआएं आती हैं वो उसमें तो कम से कम 10-12 कम से कम गर्मी को बर्दाश्त करने की होनी चाहिए। सिंपल दुआ, अगर आपको गर्मी लग रही है और आप दुआएं ढूंढ रहे हैं, क्या आपके मुंह से दुआ निकलनी चाहिए दुनिया की गर्मी देख के, अल्लाह मुझे जहन्नम की गर्मी से बचाए, अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन्नार। सिंपल, मत हर एक चीज की खोज खुरेदने पड़े। अगर हमें बहुत शौक है कि हमें जो इंटरनेट से चीज मिले दीन के बारे में, अब हम उसको चेक करने के लिए कि ये सही है कि नहीं है किसी ना किसी को जरूर मैसेज करें। देखिए, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपनी पढ़ाई, अपना घर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ के हर एक के सवाल का जवाब देने के लिए अब उसको दलील के साथ बात करें। तो इसको क्या मतलब है, अपना एक उसूल बना लें। जो इल्म आपके पास कुरान और सुन्नत के मुताबिक आता है उस पर जम जाएं। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई दुआएं हमारे लिए काफ़ी नहीं है? क्या हमें उनमें कोई कमी लगती है जो हम नई नई दुआएं ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं? क्या आपका इबादत का तरीका हमें कमज़ोर लगता है या उसमें हमें कोई फॉल्ट लगता है, या हमें लगता है हम उसको मानकर अल्लाह की बात मानेंगे तो शायद हम अल्लाह की वो कुर्बत हासिल नहीं कर सकते जो किसी वलीउल्लाह के बताए हुए तरीके के जो नवाफिल हैं उसको पढ़ के हम कुर्बत हासिल कर लेंगे? सिंपल उसूल, कुरान और अहादीस को थाम लीजिए, दैट्स इट। माशरे में से कन्फ्यूजन खत्म होना शुरू हो जाएगा, चाहे इबादत का मामला है, चाहे नवाफिल का मामला या सुन्नतों का मामला या दुआओं का मामला। थाम लीजिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को, या बीमारी में शिफा हासिल करने के लिए दुआएं पढ़ने का तरीका, थाम लें रसूलुल्लाह की दुआओं को। आपकी मसनून दुआएं मौजूद हैं कि जब बीमारी आए तो कौन सी दुआ पढ़ो, जब कोई घर में बीमार हो जाए तो कौन सी दुआ पढ़ो, ये सब तरीके मौजूद हैं। जब हम सुन्नतों को नहीं जानते तो हम अपने उस गैप को, उस वैक्यूम को फिल करने के लिए जो जहां से हमें देते हैं हम उसके अंदर डालते जाते हैं। दिस इज नॉट द राइट वे। इस्लाम ऐसे जिंदा नहीं होगा। अगर आपको इस्लाम को जिंदा करना है सो यू हैव टू स्टिक टू कुरान एंड सुन्ना। और अगर आपको नहीं पता कि सुन्नत क्या है, इसलिए कि सुन्नत के नाम के ऊपर भी बहुत सी चीजें जो हैं वो माशरे में फ्लोट कर रही हैं, देन यू हैव टू गो एंड स्टडी इल्म। जाएं और कुरान पढ़ें, सीखें और सिखाएं, लग जाएं पढ़ने के अंदर, अल्लाह ताला खुद ब खुद आपके अंदर फुरकान फिट कर देगा। तो इन नौजवानों का आयत नंबर 15 में क्लेम ये था कि जब ये कोई अथॉरिटी के साथ बात नहीं कर सकते तो क्यों इतनी बड़ी बात जो है वो अल्लाह के लिए अपनी जुबानों से निकालते हैं। आयत नंबर 16 में फरमाया वَإِذْ تَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ। और याद करो जब तुम सब उनसे अलग हुए, ये इन नौजवानों से कहा जा रहा है, जब तुम उन सब से अलग हुए, शिर्क करने वाले लोगों से अलग हुए। आपको याद, मैंने कहा था कि मैंने यहाँ पर याद करो क्यों कहा है, जो लोग अरबी जानते हैं यहाँ पर एक फेल छुपा हुआ है, उज़्कुरू, याद करो जब अलग हुए तुम सब उनसे, यानी कि पेगन माशरे से। ये जो नौजवान हैं ये इनका आपस का ही एक दूसरे से कलाम है, ये अल्लाह का कलाम इनसे नहीं हो सकता। इसलिए कि स्कॉलर्स कहते हैं कि ये नबी तो नहीं थे कि अल्लाह इन पर वही भेजता, तो ये इनका आपस का एक दूसरे से एक तरह का कलाम है। इसलिए कि वही हमेशा अल्लाह की तरफ से आती है और एक सोर्स से आती है, और वो सोर्स कौन सा है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम। वही हमेशा जिब्राइल अलैहिस्सलाम के सोर्स से आएगी और वही हमेशा अंबिया पर आएगी। ये सिंपल रूल है। तो ये अल्लाह ताला का कलाम नहीं है, ये अल्लाह ताला ने हो सकता है उनके दिल में डाला हो, जिसको आप अरबी में कहते हैं इल्हाम। अल्लाह ताला ने उनके दिल में इल्हाम कर दिया हो कि ये जो है इस माशरे से अलग हो जाए। और जब तुम सब अलग हो जाओ उस पेगन माशरे से जिसकी वो अल्लाह के अलावा इबादत करते हैं, वमा या अबुदू ना इल्लल्ला, यानी वो उस माशरे से भी अलग हो जाओ और जो उनके बुत हैं, जो उनके स्टैचूज हैं, उनसे भी अलग हो जाओ. यहाँ दो मीनिंग्स हो सकते हैं. ये जो वमा याबुदूना इल्लल्लाह है, स्कॉलर्स ने इसके दो मीनिंग्स किए हैं, दो तरह तर्जुमा किया जाता है. आपके जो पास ट्रांसलेशन है उसमें एक ही तरह लिखा हुआ है, आप चाहें तो दूसरा वाला भी यहाँ लिख लीजिएगा. ये तो यहाँ पर एतजल तुम आया है, एतजल तुमो हूँ. असल में एतजल तुम एक फेल है और इसका मतलब होता है टू अवॉइड समवन डिलिबरेटली, यानी मालूम होते हुए किसी से अलग हो जाना. ए अतजल तुम, आपने मोतजिला लाइट्स का नाम सुना, मोतजिला ग्रुप, अगर नहीं सुना तो जिन्होंने सुना है उनको अंदाजा होगा. मोतजिला ग्रुप, इसी से ये लफ्ज बना है. वो सेट जो कि अहले सुन्नत से अलग हो गया, जो लोग जानते हैं उनकी इंफॉर्मेशन के लिए, इमाम हसन अल बसरी के स्टूडेंट थे वासिल बिन अता, वहां से मोतजलाइट्स जो थे इनकी इब्तदा हुई थी. तो एतजलतुम, डिलिबरेटली किसी से अलग हो जाना. ये जो आगे जुमला आया है वमा याबुदूना इल्लल्ला, स्कॉलर्स कहते हैं एक ये नौजवानों के लिए हो सकता है अल्लाह की तरफ से. आपको मालूम है ना कि कुरान की आयात में अल्लाह ताला दरमियान दरमियान में अपनी स्टेटमेंट्स भी रख देते हैं. तो एक स्कॉलर्स की राय ये है कि अल्लाह ताला ने इन असाबे कहफ के लिए कहा है वमा याबुदूना इल्लल्ला, यानी वो अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करते थे. सिंपल, वो सिर्फ अल्लाह को इलाह की पोजीशन पर रखते थे. और दूसरा मफहूम स्कॉलर्स ने किया है कि ये इसी में जो अल्लाह ताला ने इनके दिल में बात डाली थी कि ये अपने माशरे से अलग हो गए, और इन्होंने कहा कि इनमें से एक ने कहा कि तुम अलग हो जाओ उन सब से और उस सब से भी अलग हो जाओ, यानी उन स्टैचूज उन बुतों से भी अलहदा हो जाओ जिसकी वो इबादत करते हैं. तो या ये अल्लाह का कॉल है नौजवानों के लिए, या उन्हीं नौजवानों में से किसी एक का कॉल है. दोनों तरह से इसको तर्जुमा किया गया है. अगर ये अल्लाह का स्टेटमेंट है तो इसका मतलब क्या है कि अल्लाह ताला उनके ईमान की गवाही दे रहा है कि वो अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करते थे. इसमें हमारे लिए एक सबक क्या है, ए अतजल तुम से क्या मतलब है, डिलिबरेटली किसी जगह को छोड़ देना. आपके और मेरे लिए सबक यह है कि हमारी जिंदगी में आज भी ऐसी जगहें ऐसे माहौल हो सकते हैं जो अल्लाह की नाफरमानी के हों. जब आपको पता है कि एक माहौल अल्लाह की नाफरमानी का है, एक सर्कल कॉमनली अल्लाह की नाफरमानी का है, डोंट बी पार्ट ऑफ इट. एज लॉन्ग एज कि आपको लगता है कि आप उनके दरमियान में रह के तबलीग कर सकते हैं, मगर फ्रेंकली स्पीकिंग जो इस तरह के लोग होते हैं उनमें तबलीग करना इतना आसान नहीं होता. आप दो घंटे उनके साथ बैठेंगे, आप एक घंटा 55 मिनट सिर्फ ये सोचते हुए गुजार देंगे कि मैं कैसे क्या बात कहूँ और कौन सी बात कहूँ और कहाँ से शुरू करूँ और कब ख़त्म करूँ. तो इससे बेहतर क्या है, जो स्कॉलर्स ने एक तजल तुम से जो है वो मफहूम निकाला है, वो कहते हैं कि वो लोग और वो जगह जो ओपनली अल्लाह की नाराजगी और अल्लाह की नाफरमानी का काम करने वाली हों, वो हालात और वो माहौल जो इस्लाम के एंगल से क्वेश्चनेबल हों, अपने आप को उनसे दूर कर लीजिए. डोंट बी पार्ट ऑफ इट, अपने आप को उनसे अलहदा कर लीजिए. यहाँ पर भी इन मोमिनीन की, इन असहाब कहफ की इसी क्वालिटी को मेंशन किया गया है. इसलिए कि जब इंसान अपने आप को खुद क्वेश्चनेबल इन्वायरमेंट्स में रखता है तो याद रखें बहुत जल्दी हमारा मुसलमान का लेबल अल्लाह के हाँ मुनाफिक के लेबल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है. मुनाफिक का लेबल यहाँ नहीं विजिबल होता, किसी के माथे पर नहीं लिखा होता कि ये मुनाफिक है, ये हिपोक्रेट है, अल्लाह जानता है. इसलिए कि दुनिया में अट्रैक्शन है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस का मफहूम आता है कि अल्लाह ताला ने जन्नत को किस चीज से घेर दिया है, नफ्स को पसंद आने वाली, नफ्स को ना पसंद आने वाली चीजों से, और जहन्नम को किससे घेर दिया है, नफ्स को पसंद आने वाली चीजों से. तो दुनिया में वो सब चीजें जो अल्लाह की नाफरमानी की होंगी बज़ाहिर बहुत अट्रैक्टिव होंगी, बज़ाहिर बहुत सूदिंग होंगे, बज़ाहिर उनमें बहुत लज्जत और मजा और एंटरटेनमेंट नजर आएगी. अगर आप और मैं अपने आप को मुस्तकिल ऐसे माहौल में रखेंगे जो अल्लाह की नाफरमानी का माहौल है, तो बहुत तेजी से आपका और मेरा ईमान, आपका और मेरा मुस्लिम होना मुझे और आपको मुनाफिकत की तरफ ले जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा. तो इसी चीज को यहाँ मेंशन किया गया कि इन नौजवानों ने अपने आप को इस पोजीशन के ऊपर, जब उनको लगा कि अब ये इस माशरे में मजीद नहीं रह सकते, ए तजल्तुम, इन्होंने अपने आप को वहां से डिलिबरेटली अलहदा कर लिया और अपने आप को उस सब से भी अलहदा कर लिया जिसकी वो सब लोग अल्लाह के अलावा इबादत किया करते थे. आगे आया फाउ इलल कहफी, तो क्या करो, तो अब जाके गार में पनाह ले लो. वो आता है एक जगह से दूसरी जगह पनाह लेने के लिए। फ़ाहु फेले अमर आया है, कुरान में फेले अमर आते हैं ना, कमांड्स आते हैं, और कुरान में दो तरह की कमांड्स आते हैं। कुरान में पॉजिटिव कमांड आती है जब किसी काम के करने का हुक्म दिया जाता है, कुरान में नेगेटिव कमांड आती है जब किसी काम से करने का रोका जाता है। यहाँ क्या करने का हुक्म दिया जा रहा है, करने का या रोकने का? करने का हुक्म दिया जा रहा है। तो अल्लाह की तरफ से इल्हाम था इनके अंदर, दिलों के अंदर, कि क्या करो कि एक गार में जाके पनाह ले लो। फेले अमर आया है, अगर तुम पनाह ले लोगे तो कंडीशनल है। आगे क्या फरमाया, यंशुर लकुम रब्बुकुम मिर रहमतिही, जब अल्लाह की बात मानोगे, इसलिए कि दिल में यही आ रहा था ना। और जब इंसान अल्लाह से मदद मांग के, अल्लाह से मदद मांग के कदम उठाता है, तो ये आपका और मेरा ईमान होना चाहिए कि फिर अल्लाह हमें डायरेक्शन दिखा रहा होता। हम दुआए इस्तिखारा क्यों करते हैं? दुआए इस्तिखारा का मतलब क्या है? इस्तिखारा खैर तलब करना चाहना। हम अल्लाह पर छोड़ देते हैं, अल्लाह दो रास्ते हैं, मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं कौन से रास्ते पर जाऊं, अल्लाह मुझे डायरेक्शन दे दे, और उस रास्ते की डायरेक्शन दे दे जो मेरी दुनिया और आखिरत के लिए खैर का बायस बने। हम इस्तिखारा करके यही करते हैं ना। और 99% आई एम श्योर आप सबके साथ भी यही होता होगा, इस्तिखारा करने के बाद कोई बहुत क्लैरिटी आपको फौरन नहीं मिलती कि आप कहें हाँ मुझे तो ख्वाब में ग्रीन लाइट नजर आई थी, और ग्रीन लाइट उस रास्ते पर नजर आई थी तो मैं तो अब उस रास्ते पर चलना शुरू कर दूंगा। मेरे जैसा कोई बेचारा होगा ना, तो उसको इस्तिखारा करने के बाद थोड़े दिन तक और कन्फ्यूजन बढ़ जाती है, समझ ही नहीं आती कि भाई क्या करें और क्या ना करें। गिव योर सेल्फ टाइम इस्तिखारा करने के बाद, और मामलात को अल्लाह पर छोड़ दें। अल्लाह ताला खुद ब खुद आपके लिए उस तरफ रास्ता स्मूथ करना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह, जिसमें खैर होगी। इस्तिखारा करने का मतलब यही है कि अल्लाह मैंने अपना मामला आपके हवाले कर दिया। तो अल्लाह ताला ने इनके दिलों में इल्हाम किया कि क्योंकि ये खैर तलब कर रहे थे। वो दुआ याद है इनकी जो आई थी आयत नंबर 10 में, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा, अल्लाह खास अपने पास से हमें ऐसी रहमत दे जो ऑर्डिनरी आप नहीं देते। सही, क्योंकि इन्होंने दुआ की थी तो अल्लाह ने उनकी इस दुआ की वजह से, समझ लें वो उनकी दुआ इस्तिखारा थी, क्योंकि इन्होंने अल्लाह से मांगा था कि अल्लाह हमारे लिए वहाई लना मिन अम्रिना रशदा, अल्लाह हमारे लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दे। तो अल्लाह ने इनके दिल में इल्हाम किया, बिल्कुल जैसे इस्तिखारा करने के बाद अल्लाह आपके दिल में इल्हाम करता है कि दो में से कौन सा काम किया जाए। तो अल्लाह ने इनके दिल में इल्हाम किया कि ठीक है अब तुम गार की तरफ जाकर पना लो, और इस अमर को मानते हुए, जो इस अमर को ये मानते तो कंडीशनली क्या होता, अल्लाह ने बता दिया यंशुर लकुम रब्बुकुम रहमतिही, तुम्हारा रब तुम्हारे लिए अपनी रहमत फैला देगा। वयुहयी लकुम मिन अम्रिकुम मिरफका, और तुम्हारे काम में आसानी का सामान बना देगा। आप इस आयत को आयत नंबर 10 से कनेक्ट कर लीजिए, ये असल में इनकी उनकी उस दुआ का जवाब है कि तुम्हारा रब तुम्हारे लिए आसानी करेगा। ये नौजवान जो अपनी कम्युनिटी से अलहदा हुए थे, इन्होंने अल्लाह से मदद मांगी तो अल्लाह ने इनके दिल में डाल दिया कि कहाँ जाओ, किसी दूसरे शहर में ना जाओ, बल्कि तुमने क्योंकि मुझसे खास चीज मांगी है, मिल लदुन का रहमतन मांगी है, तो अल्लाह ने इनके दिल में डाला कि किसी पहाड़ की गार में जाके बैठ जाओ। और जब भी किसी पहाड़ की गार में जाके बैठे तो अल्लाह ने भी कह दिया, तुम्हारा कदम था, कॉज एंड इफेक्ट, अल्लाह की बात मानी, कैसे हो सकता था कि अल्लाह इनकी कदर ना करता। अल्लाह ने कहा अल्लाह अपनी रहमत को फैला देगा, और साथ साथ अल्लाह ऐसे फैसिलिटीज के सामान मुहैया करेगा कि जिससे जो है मुस्तकिल फायदा पहुंचता रहेगा। इस चीज से स्कॉलर्स ने, इसी आयत से स्कॉलर्स ने एक बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट जो है वो डिस्कस की है। जाहिर हम उसको सबको नहीं डिस्कस कर सकते, लेकिन उसका एसेंस यह है कि इंसान, जैसे हम आज भी देखते हैं बास औकात आप भी बहुत कंफ्यूज हो रहे होते होंगे कि हस्बैंड कह रहे हैं फला जगह शिफ्ट होने को, या हस्बैंड कह रहे हैं फला जगह छोड़ने को, कि यहाँ पर ये इश्यूज हैं ये इश्यूज हैं। उससे रिलेटेड जो इसमें डिबेट आती है, जो स्कॉलर्स ने इसमें डिबेट किया, वो ये कहते हैं कि इंसान कब ईमान को सामने रख के किसी अपने इलाके को, किसी अपने शहर को, किसी अपनी कम्युनिटी को छोड़े, उसके लिए उसूल वो क्या देते हैं। वो कहते हैं कि आखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी तो 13 साल मक्का में परसिक्यूशन होता रहा, क्यों नहीं आप दूसरे ही साल छोड़कर चले गए? क्यों नहीं जब हजरत बिलाल को घसीटा जा रहा था मक्के की पथरीली जमीन के ऊपर, क्यों नहीं जब हजरत सुमैया की शर्मगाह में नेजा मार के उनको शहीद कर दिया गया था, क्यों नहीं जब हजरत अखबाब इब्ने अरद को तपते हुए सहरा में कोयले रखकर जो है वो आजमाया जाता था, क्यों नहीं छोड़ा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को? क्यों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्म के बावजूद जो था वो 13 साल मक्के में रहना पसंद किया? स्कॉलर्स कहते हैं कि उसमें उसूल ये है, जनरल रूल, कि आप अपनी उस कम्युनिटी में रहेंगे एज लॉन्ग एज कि आप उस कम्युनिटी को बेहतर करने की कोशिश में लगे रहें, जब तक आपको उम्मीद रहे, जब तक आपकी जान को खतरा ना हो, जब तक आपको आपकी इबादत, आपकी फ्री इबादत से रोका ना जाए। दो पॉइंट बहुत जरूरी हैं। वो इलाका जहां आप अपने ईमान पर और अपनी इबादत पर फ्रीली कायम रह सकते हैं, आपकी इबादत और आपका मुसलमान होने का जो मकसद है वो डिस्टर्ब नहीं होता। दूसरा, साइमल्टेनियसली आप उस माशरे में तबलीग करते हैं, आप उस कम्युनिटी में अल्लाह की बात फैलाने की कोशिश करते हैं, आप लोगों की चाहे आप पब्लिक सर्विस करके उनको अल्लाह के करीब लाना चाह रहे हैं या आप डायरेक्ट इल्म देकर उनको अल्लाह के करीब लाना चाह रहे हैं, दोनों तरीके अल्लाह के करीब लाने के हैं। जब तक आप ये दो काम कर रहे हैं आप उस कम्युनिटी में रह सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक मक्का में रहे जब तक कि आप बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन जब आपकी जान का खतरा हो गया, हम जानते हैं कि जिस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की है आपका असैसिनेशन अटेम्प्ट हो गया था, आप हिजरत कर गए थे हजरत अली को अपने बिस्तर पर सुला के, लेकिन मक्का की तरफ से कुरैश के सरदारों की तरफ से आपका असैसिनेशन अटेम्प्ट किया गया था, आपको नाऊज़ु बिल्लाह कत्ल करने की पूरी कोशिश और तैयारी कर ली गई थी जब भी अल्लाह ने हुक्म दिया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत कर जाएं। आपको 13 साल तक उस वक्त तक मक्का में रखा रहा अल्लाह ताला के हुक्म से जब तक कि आप अपनी तबलीग भी करते रहे और अपनी इबादत भी फ्रीली करते रहे, लेकिन द मोमेंट लोगों ने आपके कत्ल का प्लान करना शुरू कर दिया तो फिर अल्लाह की तरफ से हुक्म आया कि आप यह इलाका छोड़कर चले जाएं। ये उसूल जो है ये हमारे लिए भी है। हर इंसान को अपनी सिचुएशन खुद देखने की जरूरत है। अगर आप किसी ऐसे इलाके और ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की नाफरमानियां हैं और आपको वहां पर अपनी इबादत फ्रीली करने का मौका नहीं मिलता और आप वहां पर तबलीग भी नहीं कर रहे, देन इट्स योर चॉइस। फिर प्रेफरेबल यही है कि आप वो जगह छोड़ दें और वहां से हिजरत कर जाएं। लेकिन अगर आप इन दो कंडीशंस के साथ रहते हैं तो फिर आपको वहां पर रहने की इजाजत है उस वक्त तक जब तक कि आपकी जान को खतरा ना हो। फ़ाहू इलल काफ़ी, तो गार में पनाह लो। इसके लिए एक ओपिनियन ये भी आती है कि ये उन्हीं में से एक की जो थी वो सजेशन था, उसका मशवरा था, उन्हीं असहाबे कहफ में से एक का जिसके दिल में अल्लाह ने इलाम किया उसने उसको आउट लाउड बता दिया, उन्हीं नौजवानों में से एक ने मशवरा दे दिया या इल्हाम था, जो भी था आप उसको इस तरह से देख लें। तो जो अल्लाह ने उनके दिल में खैर डाली उन्होंने उसको पूरा किया। अल्लाह ने यहाँ पर यह कहा कि तुम गार की तरफ पना लो, इल्हाम किया उनके दिल में तो अल्लाह अपनी रहमत को फैला देगा। गार की तरफ पना लेने का मतलब क्या था कि दे आर लीविंग देयर लग्जूरियस लाइफ स्टाइल बिहाइंड, घर छोड़ रहे हैं ना। और फिर आपको बताया था कि इलीट क्लास से इनका ताल्लुक था, जाहिर बात है कंफर्टेबल घर होंगे। आपसे कोई कहे कि आप अपना बेडरूम छोड़ें और आप सड़क पर जाकर लेट जाएं, कैसा लग रहा है, कितने फियर्स आएंगे? मैंने बहुत ही क्रूर बात कर दी है, इसलिए कि ये भी इतना ही इम्पॉसिबल था। अपना महल छोड़ के कौन बिस्तरों पर, अपने महल के बिस्तर छोड़ के कौन पत्थरों पर जाकर लेटने को तैयार होता? नहीं होता ना तैयार। जैसे बिल्कुल इट इज ऑलमोस्ट लाइक दिस कि आपसे कोई कहे कि दोपहर के 3 बजे जो आपने बेडरूम में सोने जा रहे हैं, लीव योर बेडरूम, वो बाहर सामने जो गार्डन है उसके जो दरख्त लगा हुआ है उसके नीचे जाके फुटपाथ पर लेट जाइए, फिर देखें ईमान का इम्तिहान। और फिर हम कैसी कैसी दलीलें देना शुरू करेंगे, लो इस्लाम ये थोड़ी कहता है कि अपने आप को इतनी मुश्किल में डाल। इन नौजवानों ने इतनी ही इम्पॉसिबल बात की। हिजरत करना आसान नहीं होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बहुत खुशी खुशी मक्का से मदीना हिजरत नहीं की थी, आपका दिल मक्का में लगा रहता था। क्यों जब आप मदीना गए हैं और 16-17 महीने के बाद क़िबला तब्दील किया गया है तो वो किस वजह से किया गया था? इसलिए कि आप बार बार आसमान की तरफ चेहरा उठाकर देखा करते थे, कहते कुछ नहीं थे, लेकिन आपका दिल मक्का की तरफ होता था, आपका दिल हरम की तरफ होता था, आपकी सारा इंक्लिनेशन खाना काबा की तरफ होता था। तो अल्लाह जानता है ना हिजरत करना आसान नहीं होता, लेकिन जो हिजरत करता है अल्लाह उसको तनहा नहीं छोड़ता। جو اللہ کی خاطر مشکلات اٹھاتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں کر دیتا ہے. انہوں نے اپنے کمفرٹیبل گھر چھوڑے, اپنے کمفرٹیبل لائف سٹائل چھوڑے, تو اللہ نے بھی کہا کہ اللہ تمہارے لیے اپنی رحمت کو پھیلا دے گا, وحی لنا, اور اللہ تمہارے لیے ایسی فیسلٹیز پرووائڈ کرے گا جس کا تم امیجن بھی نہیں کر سکتے. یہ کانسیپٹ یہاں پر اسلام کا وہاں جوڑا ہے جس کو آپ کو ہم نے بتایا تھا میرے خیال ہے اورینٹیشن کے اندر, ان مع العسر یسرا, اللہ کی خاطر ایک تنگی برداشت کر رہے ہو, یاد رکھنا کئی آسانیاں آگے آئیں گی, لیکن یہ آسانیاں نظر اس کو آئیں گی جو اللہ کی خاطر اس تنگی میں سے گزر جائے گا صبر اور توکل کے ساتھ. اللہ کا اصول ہے, اسکالرس کہتے ہیں کہ اللہ ایز لاتا ہے جب بھی مشکل لاتا ہے. اللہ جس مشکل میں بندے کو ڈالتا ہے اس کے آس پاس آسانیاں آٹومیٹیکلی لے کر آ جاتا ہے. ہم اتنا زیادہ مشکل کو میگنیفائی کر لیتے ہیں کہ ہمیں آسانیاں نظر ہی نہیں آتی. آپ امیجن کریں آپ میں سے ہر ایک جو ہے وہ ایک بلون کے اندر آ کے بیٹھ جائے, بڑا سا صحیح, ایک بلون کے اندر سبھی آ کے بیٹھ گئے یہاں پہ, تو کیا ہوگا اس کے بعد, آپ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے؟ یہاں اگر بلون رکھا ہے تو مجھے وہ نظر نہیں آئیں گے, وہاں بلون رکھا ہے تو مجھے وہ نظر نہیں آئیں گے. ہم اپنی مشکل کو اتنا بڑا بلون بنا لیتے ہیں کہ ہمیں آس پاس کی نشانیاں آسانیوں کی وہ نظر ہی نہیں آتی. تو پرابلم ہمارا ہے, مسئلہ اس کلیمٹی اس مشکل کا نہیں ہے جو ہمیں ہٹ کرتی ہے, مسئلہ ہمارے ایٹیٹیوڈ کا ہوتا ہے. ورنہ آسانیاں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے آس پاس بہت سی رکھی ہوتی ہیں. اسکالرس کہتے ہیں ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے, ہر نعمت کے ساتھ امتحان ہے, اور ہر فتنے کے ساتھ فرج ہے, راستہ ہے کھلا ہوا. صرف ضرورت کس بات کی ہے؟ بصیرت کی, اللہ پر توکل کی. اللہ سے مدد میں ڈیفیشنسی نہیں آنی چاہیے تو انسان کو اپنے راستے ضرور نظر آتے ہیں. انہوں نے اپنی دنیا کو اللہ کے لیے گیو اپ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے جو ہے وہ آگے خیر کا سامان کیا. ینشر لکم ربکم من رحمتی ویحیی لکم, اور اللہ تمہارے لیے جو ہے وہ فیسلٹیز اور آسانیاں اور بلیسنگس کو بڑھا دے گا. مرفقن, مرفقن آتا ہے کہ اللہ تمہارے لیے مینس, آسان مینس جو ہے وہ کریٹ کرے گا. یہ عربی میں مرفقن میم سے شروع ہونے والا لفظ کنفرم ناؤن ہوتا ہے, اور میم کی زیر کے ساتھ اگر یہ آتا ہے تو اس کو اسم اعلیٰ کہتے ہیں, یعنی اللہ تمہیں فزیکل ٹول دے گا. تمہاری مشکل میں اللہ تم کو اسٹریٹجی دے گا, تمہاری مشکل سے نکلنے کے لیے اللہ تم کو پلان دے دے گا, اتنی مدد اللہ کرے گا. اور کیسے اللہ نے مدد کی, کن مینس کے ذریعے اللہ نے مدد کی؟ آیت نمبر 17 میں فرمایا وَتَرَى الشَّمْسَ, اور تم سورج کو دیکھتے, اذا طلعت تذاور عن کہفہم ذات الیمین واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم فی فجوة من. اچھا یہ اسی کا کنٹینیوشن ہے. کسی میں بھی نہیں آئی. اچھا چلے تو آپ اپنے ایک پیج پہ 17 لکھ لیجیے, وہاں مارک کر لیجیے گا, مس پرنٹنگ ہو گئی. آیت نمبر 17, آیت نمبر 16 ہم نے کمپلیٹ کر لی, وَيُحَيِّي لَكُمْ مِرْفَقًا. آیت نمبر 17 وَتَرَى الشَّمْسَ, اور تم سورج کو دیکھتے, ترجمہ ہے, ترجمہ فالو کر لیجیے, اِذَا طَلَعَتْ تَذَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ, اور تم سورج کو دیکھتے کہ جب وہ نکلتا تھا تو غار کی دائیں طرف سے رائٹ سائڈ سے تھوڑا سا ہٹ کر نکلتا تھا, اور جب غروب ہوتا تھا تو بائیں طرف سے ایک طرف ہو جاتا تھا, یعنی وہ اس ڈائریکشن کو بائی پاس کر جاتا تھا. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ, اور وہ لوگ یعنی وہ اصحاب کہف اس غار کے ایک کھلے علاقے کے اندر تھے. سو یہاں پر ایک کانٹروڈکشن آپ کو قرآن اور کرسچن ٹریڈیشن کا مل رہا ہے. ان کی جو تصویریں ملتی ہیں, آپ کو کیا بتایا تھا کہ ان کی تصویروں میں کیا ملتا ہے کہ وہ 7 سلیپرز بہت ٹائٹ سپیس کے اندر ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا کہا, وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ, یعنی کہ وہ ایک اوپن سپیس کے اندر اس غار کے اندر تھے, اللہ نے وہاں پلینٹی آف سپیس دی ہوئی تھی, صحیح. اور فَجْوَةٍ مِّنْ اس اینگل سے بھی عربی زبان میں آتا ہے کہ وہ غار میں ڈیپ ان سائڈ گئے ہوئے تھے, یعنی وہ پہاڑ کے اندر غار جو تھی وہ کافی اندر تک تھی, اور اس کے اندر وہ جا کے جو تھے وہ وہاں پر انہوں نے پناہ لے لی تھی. سورج کی ڈائریکشن اللہ تعالیٰ نے ایک اس مین کے طور پر بتائی جس کو پیچھے ذکر کیا تھا, مرفقا, کہ اللہ تمہارے لیے ایکچولی جو ہے وہ فزیکل ٹولز پرووائڈ کر دے گا. تو اللہ نے فزیکل ٹول کیا پرووائڈ کیا, کہ اللہ نے سورج کو ان کے لیے فیوریبل موومنٹ دے دی. یہ جو یہاں پر لفظ آیا ہے تذاورو, تضاورو بالکل اسی وزن پر ہے جیسے تعاونو. تعاونو تعاون کہتے ہیں نا آپ, کوپریشن. کوپریشن کیسے ہوتا ہے؟ تعاون دو پارٹیز میں ہوتا ہے, صحیح. کوپریشن دو گروپس میں ہوتا ہے. تضاورو سورج کے ساتھ آتا ہے, سورج کو جب طلوع کیا جاتا ہے تو عربی زبان میں کہتے ہیں تضاورو طلعت, سورج کا طلوع ہونا اور جبکہ دو پارٹیز کو فائدہ ہو. کس طرح سے؟ کہ سورج نکلتا ہے تو اللہ کا حکم پورا کرتا ہے اور لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے. تو تعاونو کے مفہوم کے اوپر تضاورو عربی زبان میں آتا ہے, دو پارٹیز کے ملنے کے لیے آتا ہے. تو یہاں پر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو غار میں ڈیپ بنا دی, اور اس کے بعد سورج کو ان کے لیے جو تھا وہ ان کے فیور میں کر دیا. اور یہ جو آیت کے الفاظ آتے ہیں کہ جب وہ طلوع ہوتا تھا تو تھوڑا سا رائٹ سے اپنی ڈائریکشن بدل لیتا تھا, اور جب وہ غروب ہوتا تھا تو وہ لیفٹ سائڈ سے تھوڑا سا بائی پاس کر جاتا تھا, اس سے بعض اسکالرز نے ڈائریکشن سے اس غار کو لوکیٹ کرنے کی جیولوجیکلی کوشش کی. تو انہوں نے کہا کہ یہ غار ایسی ہے جو فیس ٹورڈز نارتھ ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فیسنگ ٹورڈز نارتھ رکھا ہوا تھا, کہ اس پر ڈائریکٹ سن لائٹ بھی نہیں آتی تھی اور ایسا بھی نہیں تھا کہ بالکل سن لائٹ اس کو نہ ملتی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے اس غار میں ٹیمپریچر کنٹرول سسٹم ان کے لیے بنا دیا تھا. یہ لوگ دیکھ کے نہیں گئے تھے اپنی کمپس ہاتھ میں لے کے, اچھا جس غار کا منہ نارتھ پر ہوگا جس میں سورج آئے گا بھی اور ڈائریکٹ بھی نہیں ایکسپوجر ہوگا, ہم اس میں جائیں گے. نہیں, جب اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے اور چھوٹے چھوٹے قدم بھی اٹھائے جاتے ہیں تو اللہ اس میں سے بڑے بڑے خیر نکالتا ہے, اور اللہ اتنا میگنیفائڈ طریقے سے آپ کی مدد کرتا ہے کہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. اٹس بیونڈ آر امیجنیشن کہ جیسی مدد اللہ ہماری کرتا ہے. انہوں نے تو صرف اللہ سے کہا تھا کہ اللہ ہم اپنے توحید پر سٹینڈ کرنا چاہتے ہیں, اللہ اپنے پاس سے خاص ہمارے لیے سامان کر دے, باقی سارے کام اللہ نے سنبھال لیے. اللہ نے ان کو ایسی غار کی طرف ڈائریکٹ کر دیا جو فیسنگ ٹوورڈز نارتھ تھی, اور اللہ تعالیٰ نے اس غار کے اندر ان کو ڈیپ اندر جگہ دی جہاں پر اللہ نے ایک کنٹرول سسٹم ٹیمپریچر کا رکھا ہوا تھا. ڈائریکٹ ایکسپوجر نہیں تھا سورج سے کہ وہ گرمی سے ہی مر جائیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ ہی اندر غار کے اتنا بلٹ ہو جائے, اور نہ بالکل ایسا تھا کہ وہ سورج کی روشنی ان کو ملتی نہیں تھی, اس لیے کہ باہر زندہ رہنے کے لیے آپ کو سورج کی روشنی چاہیے ہوتی ہے. تو اس آیت میں یہ بھی ایک انڈیکیشن آپ کو مل گیا کہ آل دو ان کے لیے باثناہم کے لفظ کو لایا گیا ہے, لیکن یہ زندہ تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو میراکلسلی سلایا, اور اللہ نے ان کے جسم کے لیے جو سورج کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو پراپرلی پرووائڈ کر دیا. اپنے محل چھوڑے تھے نا, کیا پتا کتنا بڑا محل ہو, اپنے محل چھوڑ کے زمین پہ آئے تھے, غار میں آئے تھے, پتھروں پر آئے تھے, چٹانوں پر آئے تھے, کیسے ہو سکتا تھا کہ رب ان کی پرواہ نہ کرتا؟ تو رب نے بھی ان کے لیے بہت ہی آسان جو تھا وہ ماحول وہاں پر بنا دیا. تو یہ چیز بھی کرسچن ٹریڈیشن سے کانٹراڈکٹ کر رہی ہے کہ وہ کرسچنز کے مطابق وہاں پر ان کا جو تھا وہ انتقال ہوا تھا, اور انہوں نے انہیں سے اس بات کو ایویلویٹ کیا تھا جب وہ اٹھ کر شہر میں آئے تھے کہ اللہ نے ان کو موت کے بعد دوبارہ اٹھایا ہے, جس پر ایک ڈیبیٹ کرنے والے جو لوگ تھے ان کا اور کنوکشن ہو گیا تھا کہ انسان کو جب اٹھایا جائے گا موت کے بعد تو بالکل ان کی طرح جسم اور روح کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ہم نے اس کو ڈسکس ڈیٹیل سے کیا تھا. تو اس چیز میں وہ چیز واضح ہو گئی کہ اللہ نے ان کے لیے آسانی فرمائی, ماحول ان کے لیے فیوریبل کر دیا. آگے فرمایا ذالک من آیات اللہ, یہ اللہ کی آیات میں سے ہے, یعنی ان کو پناہ دینا, آیات جمع آیا ہے, ان کو پناہ دینا اللہ کی آیت, ان کا فیس ڈکلیئر کرنا اللہ کی آیت, ان کا اس غار کے اندر ٹیمپریچر کنٹرول انوائرمنٹ میں رہنا اللہ کی آیت. اور یہ اللہ کی کئی آیات آپ کو آگے نظر آئیں گی. میں یہد اللہ, اللہ ہدایت دیتا ہے اس کو, فہو المہتد, جو ہدایت کی طرف دوڑنے والا ہوتا ہے. ومن یضلل, اور وہ گمراہ کر دیتا ہے, فلن, اور جو گمراہ ہوتا ہے, جو گمراہی کو پسند کرتا ہے, فلن تجد لہ ولی مرشدا, تو تم اس کے لیے کوئی درست راستہ دکھانے والا دوست اللہ کے علاوہ نہیں پا سکتے. جو اللہ سے دور ہوگا اس کو ہدایت کیسے ملے گی؟ جو اللہ کے قریب ہوگا اس کو ہدایت ملے گی. تو اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کے لیے فزیکلی اور اسپریچولی دونوں سپورٹ دی, اور ہمیں یہ بتا دیا کہ جو اللہ کے راستے میں آئے گا اللہ اس کو صرف اسپریچول اسٹرینتھ نہیں دے گا, اللہ اس کو فزیکل اسٹرینتھ بھی دے گا, اللہ اس کو اپنے جسم کے اوپر, اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنے کی طاقت بھی دے دے گا, اللہ اس کو اپنی ٹیمپٹیشنس کو تھامنے کی طاقت بھی دے دے گا, اللہ اس کو اپنی ڈیزائر کو کنٹرول میں رکھنے کی انرجی بھی دے دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہر طرح کی پروٹیکشن کا سامان کیا, غار کی شکل میں فزیکلی ان کو سپورٹ کیا اور انوائرمنٹ ان کے لیے پرفیکٹ بنا کر ان کو فزیکلی فائدہ دیا, اور ایمان کی وجہ سے ان کو ہدایت کی نعمت سے نوازا. آگے آیت نمبر 18 آ رہی ہے, وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ, تم ان کو سمجھتے تھے کہ وہ جاگ رہے ہیں جبکہ وہ رقود سو رہے تھے, وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ, اور ہم ان کو رائٹ لیفٹ کروٹ بھی دلواتے تھے, ان کے ڈائریکشن چینج کرتے تھے, وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ, اور ان کا جو کتا تھا وہ انٹرنس پر بازو پھیلا کر بیٹھا ہوا تھا, لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا, اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو کیا ہوتا, وَلَا مُلِئْتَ مِنْهُ رُعْبًا, تو تم خوف سے منہ پھیر کر بھاگ جاتے. یہ اللہ تعالیٰ نے اور ڈسکرائب کیا کہ کیسے اللہ نے ان پر اپنی رحمت کا سامان کیا. یہاں پر ایک چیز جو آئی ہے, وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ, بعض اسکالرز دیکھتے ہیں واللہ عالم اس میں کتنی سچائی ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کیونکہ بہت گہری نیند میں سو رہے تھے, جیسے ہم دیکھتے ہیں بچے گہری نیند میں سوتے ہیں تو آدھی آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں, اب اگر بچے انیمک ہوں خاص طور پہ یا بچے جو ہیں کمزور ہوں, تو جب وہ بہت گہری نیند سوتے ہیں تو آپ کو آنکھیں آدھی کھلی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہیں, بعض ہم یوں دیکھتے ہیں جاگ رہے ہیں کہ سو رہے ہیں, پھر چپکے سے دروازہ بند کر کے چلی جاتی ہے, چھوٹے بچے کی بات ہو رہی ہے جس کی سونے کا ماں انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ یا اللہ کب یہ سوئے گا اور مجھے اپنا پرسنل ٹائم ملے گا. جن کے بچے چھوٹے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان کی اسٹرگل ہے, تو بعض اوقات ہم جب بہت گہری نیند میں سوتے ہیں تو آدھی آنکھیں آپ کی کھلی ہوئی ہوتی ہیں. بعض اسکالرز لکھتے ہیں کہ کیونکہ یہ بہت گہری نیند میں تھے تو اگر کوئی ان کو دیکھتا تھا تو اس کو لگتا تھا ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, یہ جاگ رہے ہیں. ایک ان کا کلیم ہے, اللہ بہتر جانتا ہے, واللہ عالم, اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم ان کو وَنُقَلِّبُهُمْ, ہم ان کو دائیں اور بائیں جو تھے وہ کروٹ دلاتے تھے, بالکل جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں نیند میں دائیں اور بائیں کروٹ دلاتا ہے تاکہ ہمارا بلڈ سرکولیشن نہ رک جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی زندہ رکھا ہوا تھا, اس کی علامت بھی اس کی نشانی بھی اس آیت نمبر 18 سے واضح کر دی کہ وہ لوگ اس وقت موت میں نہیں تھے بلکہ زندہ تھے اور نیند کے اندر تھے, گہری نیند کے اندر تھے. اور ان کا کتا جو تھا وہ کلب ہم باسطن ذراعیہ بالوسیط, ان کا کتا انٹرنس پر بیٹھا ہوا تھا. تو کچھ اسکالرس کا کہنا یہ ہے کہ دیکھنے والا خوف زدہ کیوں ہوتا تھا, تو مختلف رائے آپ کو بہت ساری تفاصیل میں مل جاتی ہیں کہ کیوں ان کو لوگوں کو دیکھ کر یا ان کے کتے کو دیکھ کر لوگ جو تھے وہ ڈر جاتے تھے, اس لیے کہ آگے آئے گا نا کم سے کم 300 یا 300 سے کچھ زیادہ سال یہ اس غار میں سوئے رہے تھے, تو کسی نہ کسی کا تو انٹریکشن ہوا ہوگا جب تک کہ یہ ایکسپوز نہیں ہو گئے. جب ایکسپوز ہو گئے, جب ان کا پتہ چل گیا کہ یہ ہیں, تو پھر اس کے بعد ان کے اوپر جو تھی وہ مسجد یا دیوار بنائی گئی تھی. تو اسکالرز کہتے ہیں کہ جب تک یہ سو رہے تھے 300 سال تک, کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر کوئی ان کو دیکھتا تھا تو اس پر خوف طاری ہو جاتا تھا, اس کے لیے انہوں نے مختلف ریزننگ دی ہیں. ایک وہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر غاروں کے اندر وہ جو مافیا ٹائپ لوگ نہیں ہوتے, گینگسٹرز,